समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। योगः कर्मसु कौशलम् यानी कर्मों की कुशलता ही योग है, या यूं कहें कि योग वो विधा है जो हमारे कर्मों में कुशलता लाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि योग का दायरा इससे कहीं ज्यादा व्यापक और अनंत है। आज हम सब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं।
Yog is an ancient physical, mental and spiritual practice that originated in India. The word yog derives from Sanskrit and means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness.
योग केवल व्यायाम का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक पूर्ण दर्शन है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है और हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। योग आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आइए सुबह का थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल कर योग करें, जिससे मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ हो सकें। इसके साथ ही आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
गुड मॉर्निंग एंड हेलो आकर्षता एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। डियर लिसनर्स, वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 21st ऑफ जून। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस आकर्षता।
यस,
The 10th International Day of Yoga is being celebrated across the country today. The main function will be held at Sher-e-Kashmir International Conference Center, SKICC, in Srinagar, Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from Srinagar shortly. Over 7,000 people from various walks of life are expected to gather with Prime Minister on the banks of Dal Lake, Srinagar, to mark this special occasion. J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha, Union Minister Pratap Rao, Ganpat Rao, Jadhav and many other dignitaries will also join the program led by the Prime Minister. This year's theme, Yoga for Self and Society, emphasizes yoga's vital role in fostering both individual well-being and societal harmony. On the occasion, Prime Minister will address the gathering and participate in the Common Yoga Protocol session, highlighting yoga's significance in nurturing physical, mental and spiritual growth.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में अस्थायी अध्यक्ष के सहयोग के लिए कोडी कुन्नील सुरेश, थालिक कोटाई, राजू तेवर बालू, राधामोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को भी नियुक्त किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। सत्र के दौरान नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा की बैठक 27 जून से शुरू होगी। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा।
The CBI has registered a case in connection with UGC NET June 2024 examination. It comes after the exam was cancelled by the government. The case was registered against unknown persons on the basis of complaint received from Secretary of Department of Education for compromising the integrity of the UGC NET exam. The case has been filed under sections of criminal conspiracy and cheating. The exam was conducted by National Testing Agency across different cities in the country on 18th of this month.
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी लखबीर सिंह संधू से जुड़े एक अन्य प्रमुख आतंकवादी जसप्रीत सिंह को पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 32 बोर की रिवॉल्वर, 69 कारतूस, हीरोइन, अफीम, 2 लाख से अधिक की नकदी और विभिन्न संदिग्ध डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी बातचीत के अलावा उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। भारत में नई सरकार के गठन के बाद ये पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा होगी। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में भी वे शामिल थी।
The 18th Mumbai International Film Festival, MIFF, will come to a close in Mumbai this evening. The 7-day event had started with the India premiere of Billy and Molly, an otter love story directed by Charlie Hamilton James on 15th of this month. This year, MIFF showcased 314 films from 59 countries in 61 languages. Besides Mumbai, parallel screenings were also be held in Delhi, Kolkata, Pune and Chennai to broaden the festival's reach to audiences across the country. In the ongoing heatwave in Delhi, 2 people have lost their lives at Safdarjung Hospital in the past 24 hours due to heatstroke. According to hospital authorities, 6 people were admitted for heat stroke yesterday and 3 are in critical condition. The hospital currently has 47 patients with heat-related illnesses, out of which 29 are in critical condition. Since June 16, there have been 62 admissions due to heat-related illnesses, with the death toll reaching 24 to date. The hospital said that the sensitization programs were conducted for all healthcare providers during the pre-heat wave stage.
2020 क्रिकेट के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्लाह उमरजई ने सर्वाधिक 26 रन बनाए और भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 53 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान ने 3 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर 8 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।
And Akarshita, there's one more news before we end the headlines. The government will launch the 10th round of the commercial coal block auction today. In this round, 60 blocks will be offered. Union Minister of Coal and Mines, G. Kishan Reddy, will launch the auctions in Hyderabad. In a statement, Coal Ministry said that these blocks are strategically located across different states and regions, and these will support regional economic development and help in employment generation. The upcoming coal mines are located in Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana and West Bengal. 16 mines will be offered in Odisha, followed by Chhattisgarh and Madhya Pradesh, wherein 15 coal mines will be auctioned. Commercial coal block auction was launched by the Prime Minister in 2020. Since then, the Ministry has successfully auctioned 107 coal blocks during the last 9 rounds. So far, 11 commercial coal blocks have been operationalized in the country.
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें। चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ रेणु हैं।
थैंक यू आकर्षिता। लेट्स बिगिन विद चेन्नई मेट्रो। Tamilnad Registration Department has implemented a new security measure to combat fraud during the document registration process. All 582 sub-registrar offices in the state now have fingerprint scanner facilities, and the buyer-seller biometrics will be matched against the 1 crore plus sample date bank. This will serve as an additional safety measure to prevent fraud while registering documents. IG Registration Dinesh Ponraj Oliver said that when a seller wants to register his property, his fingerprint scanning will be done. The registration will be done only if it matches that available in the database. If not in the database, the existing Aadhaar verification process will be used. Another news that I have from Chennai. Southern Railway will get more than 700 assistant local pilots who will ease the workload on the existing crew who run trains. This will help meet the crew needed to run more passenger and long distance trains. Assistant local pilots help the local pilots to operate the train. They inform the local pilots of the signals and the signs along the route, identify track defects, handle emergencies, communicate with the train guard and other staff and assess the efficiency of the locomotive. Moving on to Bengaluru, Karnataka Infrastructure Development Minister M.B. Patil has sought a feasibility report for a new airport for Bengaluru, known for its rapid growth. In a meeting with the officials, the minister noted that the existing Bengaluru International Airport is the third busiest airport in the country. To meet the growing demand, the minister said that a second airport is now essential to efficiently manage the passenger traffic and freight in the coming years. The minister, M.B. Patil, felt that in the next 9 years, the process could be started for land acquisition and compensation for landowners so that the new airport work could start by 2033. And the last metro I have is Hyderabad. The Telangana state government has requested the centre for immediate allotment of 80,000 metric tons of diammonium phosphate or DAP fertiliser to meet the demand from Kharif farmers during the next month. State Agriculture Minister T. Nageshwar Rao has written to Union Minister for Chemicals and Fertilisers J.P. Nadda seeking timely supply of fertilisers. He stated that the sowing operations were in full swing in the state and consequently, brisk sale of DAP was being witnessed. The minister said Telangana being an early sowing state, the Kharif operations took off well in advance following the pre-monsoon rains received all over. Aur ab Akarshita, aap bataiye Delhi, Mumbai aur Kolkata se kya hai samachar in the Metro News section.
Ji, aur ab aaiye ruk karte hain Delhi ki. सड़क सुरक्षा बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में आईआईटी दिल्ली चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति से संबंधित चित्र व अन्य संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। इस परियोजना के तहत अनुमानित लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर होगी। सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों को आईआईटी दिल्ली द्वारा सड़क संकेतों की सटीक पहचान और वर्गीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। परिणामों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्टों में वर्गीकरण, सड़क संकेतों की व्यापक संरचनात्मक स्थिति और अन्य सहायक आंकड़ों के साथ मौजूद सड़क संकेतों की मुद्रांकित सूची शामिल होगी। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण बढ़ती मौतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। श्री सक्सेना ने कहा कि इस बैठक के द्वारा मुख्य सचिव ये सुनिश्चित करे कि राजधानी में पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय कैसे किए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने निराश्रितों, बेघरों और गरीबों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी कहा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आज जैज संगीत का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह संगीत कार्यक्रम शाम 7 बजे से एनएसडी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर शुरू होगा, जिसका प्रवेश निःशुल्क है। इसका आयोजन भारत में फ्रांस की संस्थान एलायंस फ्रांसेस द दिल्ली के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें फ्रांस के बोर्डो प्रांत से आए अकोडा नामक जैज बैंड कल अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी, जो अपने क्रियोल गाथा गीत के लिए प्रसिद्ध है। और आइए अब चलते हैं मुंबई, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर योग बाय द वे कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद श्रीकांत शिंदे, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की उपस्थिति में आयोजित किया गया। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राज्य विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की गई है। कुंकर डिवीजन और मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ नासिक डिवीजन और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान 26 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और गिनती और वोट 1 जुलाई को होंगे। मॉनसून की शुरुआत के साथ कोंकण रेलवे मार्ग पर बारिश से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई सुरक्षा उपाय कर रहा है, जैसे पटरियों पर 24 घंटे गश्त, उन्नत संचार प्रणालियों का उपयोग और बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। एक बयान में कोंकण रेलवे ने कहा कि उसने मॉनसून के मौसम के दौरान पटरियों पर 24 घंटे गश्त के लिए 672 कर्मियों को तैनात किया है। उनके अनुसार रेलवे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में अपनी भागीदारी और भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी से नियमित मौसम अपडेट द्वारा समर्थित एक सुरक्षित और सुचारू यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। अब आते हैं कोलकाता का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कार्यकारी अधिकारी विधान चंद्र रॉय बीरभूम के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वापस आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनका तबादला कर दिया गया था। शशांक सेठी आईएएस को निदेशक पर्यटन के अतिरिक्त प्रभार के साथ WBTDCAL में तैनात किया गया है। और आकाशवाणी गोल्ड पर अब वक्त हो चला है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का। तो आइए जानते हैं राजधानी दिल्ली का मौसम और कोलकाता। और राजधानी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
And Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
और आइए आप जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ है।
जी, so I'm beginning with the year 1576, Akarshita. Aaj ke din, that is 21st of June in the year 1576, the Mughal army defeated Rana Pratap Singh in the Battle of Haldi Ghat. In 1862, Ganendra Mohan Tagore was the first Indian to get the barrister at law degree after passing the examination from Lincoln Inn University.
Aur 1898 mein America ne Spain ko hara kar Guam par kabza kiya. और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने।
In 1998 on 21st of June, India and Russia signed a $2.5 billion deal to set up a nuclear power station at Kudankulam in Tamil Nadu.
और 2003 में जेके रोलिंग की पांचवी किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जारी। 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और अब बात करते हैं उन महान शख्सियतों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। तो आज हम बात कर रहे हैं जीत सिंह नेगी की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे ऐसे पहले लोक गायक थे जिनके गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड 1949 में यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी ने जारी किया था। तब पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी उत्तराखंडी लोक गायक के गीतों का रिकॉर्ड उस समय देश की मशहूर ग्रामोफोन कंपनी ने जारी किया हो। जीत सिंह नेगी अपने दौर के न केवल जाने माने लोक गायक रहे बल्कि उत्कृष्ट संगीतकार, निर्देशक और रंगकर्मी भी रहे। दो हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक कार्य किया। शाबासी, मेरो मोती ढांगा, राम बौराड़ी, मलेथा की गूल जैसी कई उनके नाटक भी लोकप्रिय हुए। जीत सिंह नेगी के शाबासी मेरो मोती ढांगा को चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कानपुर में न केवल रिकॉर्ड किया बल्कि रेडियो पीकिंग से उसका प्रसारण भी किया। वे पहले ऐसे गढ़वाली लोक गायक थे जिनके किसी गीत का ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण हुआ। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
मबीरा कचियारी का बेस माँ खुद माँ तेरी सड़कों पर मी दूछो पर देश माँ तू होली ऊँची डालू मबीरा कचियारी का बेस माँ खुद माँ तेरी सड़कों पर मी दूछो पर देश।
आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे किंतु बाद में वे हिंदू संगठनवादी बन गए। कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखी।
गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों।
अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वे रामप्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशव चक्रवर्ती के छद्मनाम का सहारा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने काकोरी कांड में भी भागीदारी निभाई थी जिसके बाद वे भूमिगत हो गए थे। इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉक्टर हेडगेवार ने ये बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने ही सुदृढ़ क्यों न हो लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में एक सशस्त्र विद्रोह को भड़काना संभव नहीं है। इसलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलन से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार समाज सेवा और तिलक के साथ कांग्रेस पार्टी से मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे। वे जीवन के अंतिम समय तक हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे।
एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग और गिविंग ट्रिब्यूट्स टू डेविड अब्राहम चिलकर हु वाज पॉपुलरली नोन एज डेविड हु वाज एन इंडियन हिंदी फिल्म एक्टर इन अ करियर स्पैनिंग 4 decades। ही प्लेड मोस्टली कैरेक्टर रोल्स स्टार्टिंग विद द 1941 फिल्म नया संसार एंड वेंट ऑन टू एक्ट इन ओवर 110 फिल्म्स इंक्लूडिंग मेमोरेबल फिल्म सच एज गोलमाल, बातों बातों में एंड बूट पॉलिश फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द 1955 फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड।
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है।
भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है।
In his prime in the period 1959 to 1975, David was one of the best and the most well-known anchor, compere and the host of the prominent award shows and other functions. He was involved in promoting sports and later became India's Olympic Games representative. He was awarded the Padma Shri Award in 1969 by the Government of India.
फिर दिन आता है इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है।
आज विनीता सोरेन का जन्मदिन है। वे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय आदिवासी युवती हैं। वे झारखंड की मूल निवासी हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत टाटा स्टील ने विनीता सोरेन को एवरेस्ट फतह के अभियान में भेजने का बीड़ा उठाया था।
And today is the birth anniversary of Reema Lagu, who was an Indian theatre and screen actress known for her work in Hindi and Marathi cinema. She began her acting career in the Marathi theatre, after which she became a household name for playing motherly roles in the 1990s and early 2000s. Lekin yahan par Akarshita, hum ek bahut hi pyari movie ka bahut pyara sa gana apne listeners ko sunwana chahte hain. Kyun na hum use sun le?
Ji.
She has been credited in the media as coming of a new age mother in Hindi cinema.
भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंगकार मुद्रा राक्षस की आज जयंती है। वे अकेले ऐसे लेखक थे जिनके सामाजिक सरोकारों के लिए उन्हें जन संगठनों द्वारा सिक्कों से तोलकर सम्मानित किया गया था। मुद्रा राक्षस ने 10 से भी ज्यादा नाटक, 12 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, व्यंग संग्रह, उन्होंने 20 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन भी किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं आला अफसर, कालातीत, नारकीय, दंड विधान, हस्तक्षेप। उन्हें विश्व शूद्र महासभा द्वारा शूद्राचार्य और अंबेडकर महासभा द्वारा दलित रत्न की उपाधियां प्रदान की गई। मुद्रा राक्षस को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है।
Today we are paying tributes to Nigar Sultana, who was an Indian actress who worked in Hindi films. She appeared in Aag, Patanga, Sheesh Mahal, Mirza Ghalib, Yahudi, Do Kalyan, etc. But she is most notably remembered for playing the role of Bahar Begum in the historical epic film Mughal-e-Azam. She was the wife of filmmaker K. Asif and Akarshita. Inhone hi Mughal-e-Azam ko direct kiya tha. And she died in May 2000 in Mumbai. She entered the films with the 1946 film Rang Bhumi. So let's listen to this beautiful Qawwali from it's another song that we're going to play for our listeners from the movie Mughal-e-Azam.
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों से प्रेम के कारण प्रभावित आज विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम बात करेंगे। वे आजादी के दौर में बजते राजनीतिक बिगुल में उनकी लेखनी उनका एक उद्देश्य बन गया था। वे उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य, सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का एक पर्याय बन गई थी।
एंड आकर्षिता, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अदरवाइज वी हैव टेकन मोर पर्सनालिटीज, सो डियर लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभाव। साथ आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.